लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि समाज से उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी पीड़ाओं पर ध्यान दिया जाए। आमीन। नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं, तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा याचना के गीत निहित हैं। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें तथा सभी बाधाओं और अड़चनों को जीवन से दूर रखें। प्रभु शत्रुओं से मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरी शरण आया हूं। मुझे तेरी इच्छा पूरी करने की शिक्षा दे, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर है। तेरा मंगलमय आत्मा मुझे समतल मार्ग पर ले चले। प्रभु, अपने नाम के अनुरूप तू मुझे नव जीवन प्रदान करेगा। अपनी न्यायप्रियता के अनुरूप तू संकट से मेरा उद्धार करेगा। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप तू मेरे शत्रुओं को मिटाएगा। तू मेरे सभी विरोधियों का विनाश करेगा, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूं। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 143वें भजन के अंतिम पद। इन्हीं पदों की व्याख्या से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस भजन में प्रार्थी अपने इस विश्वास की अभिव्यक्ति करता है कि प्रभु ईश्वर प्रत्येक नवीन परिस्थिति में नित्य नवीन तरीकों से स्वतः को अनवरत प्रकट करते रहते हैं। इस तथ्य की ओर हमने आपका ध्यान आकर्षित कराया था कि उक्त पदों में पहली बार भजनकार प्रभु के आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा का जिक्र करता है। कहता है, तेरा मंगलमय आत्मा मुझे समतल मार्ग पर ले चले, मुझे तेरी इच्छा पूरी करने की शिक्षा दे, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर है। इन शब्दों से स्पष्ट है कि वह जागरूक है। उसमें इस बात की चेतना है कि केवल ईश इच्छा को पूरी कर ही वह ईश्वर के आत्मा का यानी कि पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेगा, जो उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। 143वें भजन का रचयिता प्रभु से कृपा की याचना करता है, ताकि वह ईश्वर की इच्छा को पूरी करने से कभी भी पीछे न हटे। कहता है, तू मुझे नव जीवन प्रदान करेगा। अपनी न्याय प्रियता के अनुरूप तू संकट से मेरा उद्धार करेगा। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप तू मेरे शत्रुओं को मिटाएगा। तू मेरे सभी विरोधियों का विनाश करेगा, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूं। इन शब्दों के द्वारा भजनकार स्वीकार करता है कि वह प्रभु का सेवक है। प्रभु ईश्वर ही नव जीवन प्रदान करेंगे, प्रभु ही संकट से उसका उद्धार करेंगे तथा शत्रुओं को न्याय के अनुरूप दंडित करेंगे। श्रोताओ, हम सदैव यह याद रखें कि पिता ईश्वर ने खुद अपने इकलौते पुत्र को इस धरा पर भेजा जिन्होंने अपने क्रूस बलिदान द्वारा मनुष्यों को पाप से मुक्ति दिलाई। यह पाप के विरुद्ध और बुराई के विरुद्ध ईश्वर का अभूतपूर्व कार्य था। दूसरी बात यह कि यदि मनुष्य यह दावा करता है कि वह ईश्वर का सेवक है, तो ईश आज्ञा का पालन और ईश इच्छा को पूरी करना उसका परम दायित्व है। प्रभु यीशु मसीह द्वारा मनुष्यों पर प्रकट किए गए ईश्वर की इच्छा को पूरी करना, जैसा खुद यीशु ख्रीस्त ने किया, उसका दायित्व है।
हे प्रभु अंतर्यामी हो तुम, हे प्रभु अंतर्यामी, हे प्रभु अंतर्यामी हो तुम, हे प्रभु अंतर्यामी। सदा सदा मैं दास तुम्हारा, सदा सदा मैं दास तुम्हारा, तुम हो जगत के स्वामी, हे प्रभु अंतर्यामी हो तुम, हे प्रभु अंतर्यामी।
और अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 144वें भजन पर दृष्टिपात करें। 15 पदों वाला 144वां भजन भी दाऊद का ही भजन माना गया है, जिसमें विजय के लिए प्रार्थना की गई है। इसके प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं: प्रभु मेरी चट्टान धन्य है, वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है, वह मेरा सहायक है, मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा मुक्तिदाता और मेरी ढाल, मैं उसकी शरण जाता हूँ, वह अन्य राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। प्रभु मनुष्य क्या है जो तू उस पर ध्यान दे, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी सुधि ले। मनुष्य तो श्वास के सदृश है, उसका जीवन छाया की तरह मिट जाता है। श्रोताओ, यहाँ यह बता देना आवश्यक होगा कि बाइबल धर्म ग्रंथ का स्तोत्र ग्रंथ लगभग 800 वर्षों के अंतराल में गाए गए भजनों, गीतों और प्रार्थनाओं का संकलन है। 144वें भजन के कुछ पद हिब्रू भाषा में रचे गए हैं, जिससे यह पता चलता है कि इस भजन की रचना प्राचीन व्यवस्थान के अंत होते होते की गई थी। इस भजन में यह भी ध्यान रखना होगा कि इसके कई पद भजन संख्या 8, भजन संख्या 18, 33, 39 और 69वें भजनों में निहित शब्दों की पुनरावृत्ति है। भजनकार का अभिप्राय यही था कि दाऊद ने जिस प्रकार संकट के समय प्रभु ईश्वर को पुकारा था, उसी प्रकार हम में से कोई भी ईश्वर को पुकार सकता है। हम में से किसी की भी यह प्रार्थना हो सकती है। भजनकार दाऊद की प्रार्थना को हमारे लिए एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। भजन के दूसरे पद के शब्द कि वह मेरा सहायक है, मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा मुक्तिदाता और मेरी ढाल है, हमें स्तोत्र ग्रंथ के 18वें भजन में तथा समूएल के दूसरे ग्रंथ के 22वें अध्याय के दूसरे पद में भी मिलते हैं, जिनमें लिखा है प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। भजनकार का दाऊद के मुख से बारंबार यह याद दिलाना कि प्रभु मेरी चट्टान है, हम सबको दिया गया आश्वासन है कि जीवन की कठिनाइयों से हम घबराए नहीं, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखते हुए नित्य आगे बढ़ते चले जाएं। 144वें भजन के तीसरे और चौथे पदों में भजनकार स्तोत्र ग्रंथ के 8वें और 39वें भजनों में निहित शब्दों को दोहराता है, कहता है प्रभु मनुष्य क्या है जो तू उस पर ध्यान दे, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी सुधि ले। मनुष्य तो श्वास के सदृश है, उसका जीवन छाया की तरह मिट जाता है। श्रोताओ, भले ही भजनकार उक्त शब्दों को ईश्वर को संबोधित करता है, ये शब्द हमारे लिए कहे गए शब्द हैं, जिनमें भजनकार हम सबको याद दिलाता है कि हम कौन हैं, हमारी औकात ही क्या है, जो प्रभु हमारे लिए चिंतित रहें, हमारा ध्यान रखें और हमारी सुधि लें। ईश्वर की महिमा और उनके वैभव के आगे हम मनुष्य कुछ भी नहीं हैं। हम तो केवल श्वास मात्र हैं। हमारा जीवन क्षण भंगुर है, जो कभी भी किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। अस्तु, जीवन के जो क्षण हमें मिले हैं, उन्हें हम ईश वरदान माने, वही करें जो ईश्वर को सुग्राह्य है, तथा अपने जीवन को सफल बनाएं।
हे प्रभु अंतर्यामी हो तुम, हे प्रभु अंतर्यामी, हे प्रभु अंतर्यामी हो तुम, हे प्रभु अंतर्यामी। सदा सदा मैं दास तुम्हारा, सदा सदा मैं दास तुम्हारा, तुम हो जगत के स्वामी, हे प्रभु अंतर्यामी हो तुम, हे प्रभु अंतर्यामी।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन ने कोविड-19 टीकों को शीघ्र और अधिकतम पहुंच प्रदान करने के लिए व्यापार संबंधी पहलुओं पर बौद्धिक संपत्ति अधिकारों से संबंधित प्रतिबंधों को ढील देने का आह्वान किया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए वैटिकन के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्मदर्श इवान यूरकोविक ने विश्व व्यापार संगठन TRIPS समिति और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मंगलवार को जोर देकर कहा कि समझौते के तहत अनिवार्य लाइसेंस के लिए कुछ मौजूदा तंत्र सबसे गरीब देशों के टीकाकरण को धीमा कर रहे हैं। उन्होंने गौर किया कि पिछले कुछ सप्ताहों में किस तरह अनुभव किया गया था कि कितने देश और कंपनियों ने द्विपक्षीय समझौतों को प्राथमिकता दी, कीमतों में वृद्धि की और कतार के सामने कूदने का प्रयास किया। उन्होंने वैक्सीन प्राप्त करने में धनी देशों को प्राथमिकता दिए जाने के खतरे पर संत पापा की चेतावनी की याद दिलाई। महाधर्माध्यक्ष यूरकोविक ने ध्यान दिया कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता और वैक्सीन खुराक की उपलब्धता की कमी के कारण दुनिया के कई देश टीकाकरण कार्यक्रम में देरी महसूस कर रहे हैं। इसके बावजूद कई देश सुरक्षित एवं प्रभावी वैक्सीन उत्पादन की क्षमता होते हुए भी उन क्षमताओं का प्रयोग बौद्धिक संपदा अवरोध के कारण नहीं कर पा रहे हैं। वैटिकन प्रतिनिधि ने जोर दिया है कि चूंकि वैश्विक स्वास्थ्य संकट के कारण कोविड-19 वैक्सीन की अति आवश्यकता है, चीजों के सार्वभौमिक गंतव्य के सिद्धांत पर वैक्सीन को एक ऐसी चीज के रूप में देखा जाना चाहिए कि इसके लिए कोई भेदभाव ना हो और इसे सभी प्राप्त कर सकें। महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि सिद्धांतों और नियमों को देश के बीच और देश में एकात्मकता की भावना के साथ मानव प्रतिष्ठा को प्रोत्साहन और सम्मान देने के दृष्टिकोण से बनाए रखना चाहिए। इसके लिए बौद्धिक संपत्ति के अधिकार की रक्षा को महत्व देने की अपेक्षा हमें वर्तमान की प्रणाली में अधिकारों, सीमाओं एवं राजनीतिक नकारात्मक परिणामों पर ध्यान देना चाहिए। परमधम पीठ के अनुसार न्याय, एकात्मकता और समावेश के सिद्धांत को महामारी के जवाब में सभी विशिष्ट और ठोस हस्तक्षेप का आधार होना चाहिए। मलेशिया के कार्तिक धर्मगुरुओं ने एक बयान में कहा है कि शरणार्थी, अप्रवासी और आवास की खोज करने वाले लोग असहाय होते हैं, जिनके साथ दया, सहानुभूति एवं प्रेम द्वारा मानवीय वर्ताव किया जाना चाहिए। मंगलवार को जारी एक बयान में मलेशिया के धर्माध्यक्षों ने कहा, म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता की गंभीर राजनीतिक स्थिति के समय में हमारा विश्वास कहता है कि हम चुपचाप नहीं रह सकते और उनके प्रति जटिल व्यवहार नहीं कर सकते, जो गंभीर मानवीय संकट के कारण भागने के लिए मजबूर हैं। मलेशिया के 9 धर्म प्रांतों के धर्माध्यक्षों ने मीडिया से मिली उस जानकारी के लिए गहरी चिंता व्यक्त की है, जिसमें कहा गया है कि मलेशिया ने म्यांमार की नागरिकता वाले 1,200 लोगों को वापस भेजने की योजना बनाई है, जिसमें शरणार्थी और आश्रय की खोज करने वाले लोग भी शामिल हैं। मलेशिया के धर्म अध्यक्षों ने कहा है कि सबसे कमजोर अप्रवासी शरणार्थी एवं आश्रय की खोज करने वाले असहाय लोगों की रक्षा न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा होनी चाहिए बल्कि मानवता के नियम द्वारा भी की जानी चाहिए जो करुणा सहानुभूति एवं प्रेम पर आधारित है। कुछ ही दिनों पूर्व मलेशिया के अप्रवासी विभाग ने म्यांमार की नागरिकता वाले 186 लोगों को स्वदेश भेज दिया। धर्माधर्शों ने सरकार से अपील की है कि इस अनिश्चितता के समय में वापस भेजकर म्यांमार के उन लोगों के जीवन को वह एक अनिश्चित एवं अज्ञात भाग्य का विषय न बनाएं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी अपील की है कि वे इन लोगों की जांच करें ताकि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि एक देखभाल करने वाले मलेशिया की तरह हमें किसी को ऐसी परिस्थिति के अधीन नहीं करना चाहिए जो भय, अनिश्चितता और असहजता से चिन्हित है। मलेशिया के कानून निर्माता और अधिकार दलों ने बुधवार को मांग की थी कि सरकार जवाब दे कि क्यों इसने अदालत के स्टे ऑर्डर का उल्लंघन किया है। मलेशिया के धर्माध्यक्षों ने अपने विश्वासियों का आह्वान किया है कि वे इस चालीसा काल में अपने उपवास को म्यांमार के लोगों के लिए चढ़ाएं ताकि सभी पक्षों के बीच सही वार्ता हो सके और उस त्रस्त भूमि में स्थायी शांति और स्वतंत्रता स्थापित हो सके। म्यांमार के लोगों के प्रति प्रार्थना में एकात्मकता व्यक्त करते हुए धर्माध्यक्षों ने उनके प्रति ईश्वर की शांति, मेल मिलाप और सौहार्द की कामना की है। स्पेन के महाधर्माध्यक्ष संतियागो गोमेज ने यूरोप प्रेस को दिए एक साक्षात्कार में वेल्वा प्रांत में अस्थायी मजदूरों को अवैध तरीके से काम पर लगाने एवं रखने पर प्रकाश डाला है। इस कार्य को उन्होंने निर्दय और एक संवेदनहीन अन्याय कहा है। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं से अपील की है कि वे मिलकर इसका समाधान निकालने के लिए वार्ता शुरू करें क्योंकि ये लोग इस तरह की अमानवीय परिस्थिति में नहीं जी सकते। महाधर्माध्यक्ष ने उन बस्तियों में कारितास के कार्यों की सराहना की है और इन स्थानों पर ठोस हस्तक्षेप की आवश्यकता पर अपनी बात रखी है, खासकर अस्थायी मजदूरों को टैंकर द्वारा पानी उपलब्ध कराने के लिए ताकि उन्हें पानी लाने के लिए कोसों दूर न जाना पड़े एवं प्लास्टिक ड्रमों में पानी जमा करना न पड़े जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अंततः उन्होंने सभी संस्थाओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वे आपस में एक दूसरे को दोष न दें बल्कि अस्थायी मजदूरों के लिए मानवीय और ठोस समाधान की खोज करना शुरू करें और उनके रहने के लिए उपयुक्त स्थान का प्रबंध करें। संत प्रकरण के लिए गठित परमधम पीठ धम्म संघ के अध्यक्ष कार्डिनल मार्चेलो सेमेरारो ने वैटिकन पब्लिशिंग हाउस द्वारा इंटरनेट में निपुण धन्य कार्लो अकुतिस की जीवनी के नए संस्करण को प्रकाशित करने के अवसर पर धन्य कार्लो अकुतिस की पौत्रता की लोकप्रियता पर प्रकाश डाला। पिछले साल 10 अक्टूबर को धन्य घोषणा के बाद धन्य कार्लो अकुतिस की लोकप्रियता बढ़ी है। इस लोकप्रियता को वैटिकन प्रकाशन केंद्र ने अपनी एक पहल के द्वारा सुदृढ़ किया है। वैटिकन प्रकाशन केंद्र ने सूचना तकनीकी से स्वर्ग तक कार्लो अकुतिस शीर्षक पर एक अद्यतन संस्करण की उनकी जीवनी प्रकाशित की है। कार्डिनल सेमेरारो ने कहा, संपादकीय पहलू बड़ी बात नहीं है जो हमें संलग्न करता, किंतु इस युवा की पौत्रता के लिए उनकी लोकप्रियता निश्चय ही बढ़ रही है। उधर यूरोप के कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने यूरोपीय संसद के अध्यक्ष को प्रेषित एक पत्र में सभी के जीवन की देखभाल के महत्व पर जोर दिया है। यूरोप के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने नवंबर 2020 में पोलैंड में गर्भपात के लिए तथाकथित अधिकार पर यूरोपीय संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि हर मानव व्यक्ति ईश्वर के अनुरूप में है और उसकी रक्षा की जानी चाहिए, खासकर जब वह सबसे कमजोर स्थिति में होता है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।